नमस्कार, आकाशवाणी से विश्व दर्पण के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। भारत ने पश्चिम एशिया संघर्ष के बीच अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के आपातकालीन तेल भंडार जारी करने के फैसले का स्वागत किया। लेबनन से 177 और कतर से 500 से ज्यादा भारतीय विशेष उड़ानों के जरिए स्वदेश लौटे। ईरान ने फारस की खाड़ी में वाणिज्यिक जहाजों और संयुक्त अरब अमीरात के विमानन बुनियादी ढांचे को निशाना बनाया। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने ईरान से फौरन हमले रोकने को कहा। बांग्लादेश की 13वीं जातीय संसद का पहला सत्र आज से ढाका में शुरू। और FIH हॉकी महिला विश्व कप क्वालिफायर में हैदराबाद में भारत ने वेल्स को 4-1 से हराया। और अब समाचार विस्तार से। भारत ने आपूर्ति में मौजूदा बाधाओं के बीच अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के आपातकालीन तेल भंडार जारी करने के निर्णय का स्वागत किया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने एक बयान में कहा है कि भारत अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी का सहयोगी सदस्य है और अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा सहयोग में सक्रिय भागीदार है। मंत्रालय ने यह भी कहा है कि भारत वैश्विक ऊर्जा बाजारों की बदलती स्थिति, खासकर मध्य पूर्व में हो रहे घटनाक्रम पर लगातार नजर रखे हुए है। भारत ने पश्चिम एशिया में भारतीय नागरिकों की सहायता बढ़ा दी है। लेबनन और कतर से सैकड़ों भारतीयों को वाणिज्यिक उड़ानों से भारत लाया गया है। बेरूत स्थित भारतीय दूतावास के अनुसार 177 भारतीय नागरिकों का पहला जत्था कल उनके नियोक्ता द्वारा आयोजित चार्टर्ड फ्लाइट से नई दिल्ली वापस लाया गया। बेरूत रफीक हरारी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर लेबनन में भारत के राजदूत नूर रहमान शेख ने समूह को विदाई दी। इस बीच कतर में स्थित भारतीय दूतावास ने बताया है कि कतर में फंसे 500 से ज्यादा भारतीय कल कतर एयरवेज की उड़ानों से भारत पहुंचे। यात्री नई दिल्ली और मुंबई सहित विभिन्न गंतव्यों के लिए रवाना हुए। दूतावास ने यह भी बताया कि कतर एयरवेज आज भारत के लिए 2 अतिरिक्त उड़ानों का संचालन करने वाली है, एक नई दिल्ली के लिए और एक मुंबई के लिए, ताकि आगे की यात्रा सुगम हो सके। भारत ने दोहराया है कि वाणिज्यिक जहाजों को निशाना बनाना, निर्दोष नागरिक चालक दल के सदस्यों की जान को खतरे में डालना या किसी भी तरह से नौवहन और व्यापार की स्वतंत्रता में बाधा डालना पूरी तरह से अस्वीकार्य है। होर्मुज जलडमरू मध्य में थाई जहाज मयूरी नारी पर हुए हमले के बारे में जारी एक बयान में विदेश मंत्रालय ने कहा कि पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष में वाणिज्यिक जहाजों को सैन्य हमलों का शिकार बनाए जाने पर भारत गहरा खेद व्यक्त करता है। भारत ने लेबनान में संयुक्त राष्ट्र के शांति सैनिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की अपील की है, जो ईरान युद्ध के बाद इसराइल और हिजबुल्ला के बीच बढ़ते टकराव के लिए तैनात हैं। भारत और 29 अन्य देशों द्वारा जारी एक संयुक्त बयान में कहा गया है कि शांति सैनिकों को किसी भी तरह के हमले या धमकी का निशाना नहीं बनाया जाना चाहिए। साथ ही सभी पक्षों से यह आग्रह किया गया है कि वह अंतर्राष्ट्रीय कानून के मुताबिक हर हाल में सैनिकों और उनके परिसरों की सुरक्षा को सुनिश्चित करें। विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। पश्चिम एशिया में तनाव तेजी से बढ़ रहा है। ईरान ने फारस की खाड़ी में वाणिज्यिक जहाजों को निशाना बनाया है और संयुक्त अरब अमीरात में विमानन ढांचे पर हमले की कोशिश भी की है। अबू धाबी प्रशासन के अनुसार पुराने अबू धाबी हवाई अड्डे के पास आग लग गई थी, जिस पर फौरन काबू पा लिया गया। इससे पहले 11 मार्च को दुबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर एक ड्रोन हमले में एक भारतीय नागरिक समेत 4 लोग घायल हो गए थे। ईरान के रिवोल्यूशनरी गार्ड कोर ने कहा है कि उसकी नौसेना ने होर्मुज जलडमरू मध्य में 2 जहाजों पर गोलीबारी की और उन्हें कब्जे में लिया है। उनका दावा है कि जहाजों ने चेतावनियों को नजरअंदाज किया। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने एक प्रस्ताव पारित कर ईरान से खाड़ी देशों पर हमले फौरन रोकने की मांग की है। परिषद का कहना है कि हमले अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन है और अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा है। ये प्रस्ताव 13 मतों के समर्थन से पारित हुआ, जबकि 2 देशों ने मतदान से दूरी बनाए रखी। किसी भी देश ने इसके विरुद्ध मतदान नहीं किया। प्रस्ताव में ईरान से बहरीन, कुवैत, ओमान, कतर, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात और जॉर्डन पर किए जा रहे हमलों को फौरन बंद करने की मांग की गई है। वहीं रूस और चीन ने इस प्रस्ताव की आलोचना करते हुए कहा है कि इसमें ईरान पर हुए अमरीकी इसराइली हमलों का उल्लेख नहीं किया गया है। संयुक्त राष्ट्र में बहरीन के स्थायी प्रतिनिधि जमाल फारिस अल रोवाई ने कहा है कि खाड़ी सहयोग परिषद यानी GCC के देशों ने सम्मिलित रूप से 954 से ज्यादा ईरानी मिसाइलों, 2500 ड्रोन्स और 17 विमानों को भी मार गिराया है। उन्होंने कहा कि 6 सदस्य GCC पर हमले व्यापार और समुद्री मार्गों को बाधित कर रहे हैं। इन हमलों का क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था पर असर पड़ने से हर कोई प्रभावित है। संयुक्त अरब अमीरात के स्थायी प्रतिनिधि मोहम्मद अबू शाहब ने यह कहा है कि संयुक्त अरब अमीरात ने यह स्पष्ट कर दिया था कि उनकी भूमि, हवाई और जल क्षेत्र का इस्तेमाल ईरान पर हमले के लिए नहीं किया जाएगा। फिर भी तेहरान ने उनके देश पर हमले किए। अमरीका के ऊर्जा मंत्री क्रिस राइट ने कल कहा कि वो ईरान के विरुद्ध अमरीका इसराइल युद्ध से पैदा हुई आपूर्ति बाधा के कारण तेल की कीमतों में कमी करने के लिए पेट्रोलियम भंडार से 172 मिलियन बैरल तेल जारी करेगा। एक रिपोर्ट।
बढ़ते तनाव के बीच ऊर्जा बाजारों में भारी हलचल है। पश्चिमी एशिया के युद्ध के कारण सप्लाई में आ रही रुकावटों को देखते हुए अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी ने वैश्विक बाजारों को स्थिर करने के लिए अपने आपातकालीन भंडार से रिकॉर्ड 400 मिलियन बैरल कच्चा तेल जारी करने का फैसला किया है। तेल की कीमतों में शुरुआती उछाल के मुकाबले अब कुछ कमी आई है। अंतर्राष्ट्रीय बेंचमार्क ब्रेंट क्रूड युद्ध की शुरुआत के मुकाबले अब भी करीब 20% महंगी कीमतों पर कारोबार कर रहा है। तनाव का असर क्षेत्र के बैंकिंग कामकाज पर भी पड़ने लगा है। पश्चिमी वित्तीय संस्थानों को मिली धमकियों के बाद कई अंतर्राष्ट्रीय बैंकों ने अपने स्टाफ को वर्क फ्रॉम होम या दूसरी जगहों पर शिफ्ट कर दिया है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
बांग्लादेश की 13वीं जातीय संसद का पहला सत्र ढाका के संसद भवन में आज शुरू होगा। यह सत्र नवनिर्वाचित सदन की विधायी गतिविधियों की शुरूआत को दर्शाता है। सत्र सवेरे 11 बजे शुरू होगा। राष्ट्रपति प्रारंभिक बैठक में पारंपरिक संबोधन भी देंगे। उद्घाटन सत्र के पहले बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी BNP की संसदीय पार्टी ने बुधवार को एक बैठक की। इस बैठक में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पदों के लिए उम्मीदवारों के नाम पर फैसले करने संबंधी प्रधानमंत्री और सदन के नेता तारिक रहमान को अधिकृत किया गया। सदन की पहली बैठक के दौरान 2 पदों के उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा। नई संसद में मुख्य विपक्षी बांग्लादेश जमात इस्लामी पार्टी के प्रमुख शफीकुर रहमान विपक्ष के नेता होंगे। 12 फरवरी को हुए आम चुनाव के बाद 13वीं जातीय संसद गठित की गई। इस चुनाव में BNP के नेतृत्व वाले गठबंधन ने सदन में बहुमत हासिल किया। विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने कल चिली के वालपारेसो में नवनिर्वाचित राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण समारोह में भारत का प्रतिनिधित्व किया। इस अवसर पर श्री सिंह ने चिली के लोगों को बधाई दी। उन्होंने इसे देश के लोकतंत्र के लिए एक महत्वपूर्ण क्षण बताया। श्री सिंह ने कहा कि भारत साझा समृद्धि और वैश्विक सहयोग के लिए चिली के साथ साझेदारी को सशक्त बनाने को प्रतिबद्ध है। उत्तर कोरिया में अगले हफ्ते होने वाले संसदीय चुनावों की तैयारियां तेज हो गई हैं। समाचार एजेंसी योनहाप के अनुसार इन चुनावों के लिए सर्वोच्च जनसभा के उम्मीदवारों की समीक्षा की जा रही है और चुनाव समितियों का गठन किया जा रहा है। FIH हॉकी महिला विश्व कप क्वालिफायर 2026 में भारतीय टीम ने कल शाम हैदराबाद में पूल बी के मुकाबले में वेल्स को 4-1 से हरा दिया। और अंत में सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत ने पश्चिम एशिया संघर्ष के बीच अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के आपातकालीन तेल भंडार जारी करने के फैसले का स्वागत किया। लेबनन से 177 और कतर से 500 से ज्यादा भारतीय विशेष उड़ानों के जरिए स्वदेश लौटे। बांग्लादेश की 13वीं जातीय संसद का पहला सत्र आज से ढाका में शुरू। और FIH हॉकी महिला विश्व कप क्वालिफायर में हैदराबाद में भारत ने वेल्स को 4-1 से हरा दिया है। और इसके साथ ही विश्व दर्पण का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।